नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वेब्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण की 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सप्तम राज्य वित्त आयोग का हुआ गठन। और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, 31 मार्च तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने वाले व्यक्तियों पर लगेगा जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहली से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली में वेब्स 2025 पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस सत्र का उद्देश्य वेब्स 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण की 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में सबसे अधिक 200 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा अररिया जिले के लिए की गई है। इसके साथ ही कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भी योजनाओं की अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 3 सदस्यीय आयोग में अनिल कुमार और डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा को सदस्य मनोनीत किया गया है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए लागू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा समेत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कार्यों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ संपन्न करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हुई लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता और गबन मामले की जांच CBI करेगी। राज्यपाल से अनुमति के बाद गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वित्तीय अनियमितता का मामला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के गोपालगंज जिले की मांझागढ़ शाखा से जुड़ा हुआ है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने लोगों से 31 मार्च तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने कहा है कि बिहार पुलिस में लगभग 20,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के 18 अप्रैल तक बने प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। परिषद ने जारी निर्देश में कहा है कि 18 अप्रैल तक बने सभी शैक्षणिक, जाति और आवास प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। परिषद ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है और इसके बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 12 मार्च तक थी। सक्षमता परीक्षा से वंचित शिक्षक तृतीय सक्षमता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा मई महीने में होने की संभावना है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है और सर्वे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के लिए पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर ऊर्जा पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख लाभार्थियों के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पिछले वर्ष फरवरी में शुरू की गई इस योजना देश की बिजली व्यवस्था को तेजी से बदल रही है। इस पहल के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 4,770 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। 3 किलोवाट तक के आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए परिवार को लगभग 7% ब्याज पर बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_patna से प्राप्त की जा सकती है।
बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पूरे प्रदेश में होली का माहौल है। हर तरफ उत्साह और उमंग व्याप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण प्रदेश में होलिका दहन के 1 दिन बाद कल होली मनाई जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर होली आज भी मनाई जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि होलिका दहन का कार्यक्रम देर रात सम्पन्न हुआ। लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस दौरान होली के गीत भी गाए गए। होली को लेकर लोगों में विशेष उत्साह दिख रहा है। विभिन्न हिस्सों में बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से गुलजार हैं। लोगों में होली को लेकर विशेष उत्साह दिख रहा है। बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से गुलजार हैं। एक रिपोर्ट।
पिचकारी रंग और हर्बल गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। एम्स नई दिल्ली के त्वचा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को त्योहार के दौरान प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने और सिंथेटिक रंगों से बचने की सलाह दी है।
होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट वार्निश कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है।
समाचार कक्ष से मैं प्रियंका कुमारी।
होली पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह फेक न्यूज या उस तरह के पोस्ट है जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह के की गतिविधि में शामिल न हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीजे पर प्रतिबंध है और निर्देश दिया गया है कि डीजे पर अश्लील गाने ना बजें और यदि ऐसा होता है तो उस पर FIR दर्ज करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से पहले आदेश भी दिया है। जो राज्य की जनता है वो उमंग और उत्साह के साथ होली मनाएं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकत ना कर दें कि जिससे वहां की शांति व्यवस्था लोक व्यवस्था भंग हो।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि होली और जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
एक बात आ रही थी कि 14 को और 15 को दोनों दिन होली मनाया जा रहा है और 14 को जुम्मा का नमाज भी पढ़ा जाएगा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों से अपील की गई है कि सभी अपना अपना पर्व जो जुम्मा का नमाज है वो भी सही ढंग से अदा करें और होली खेलने वाले भी होली खेलें और कुछ ऐसा हरकत ना करें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति ताकि विधि व्यवस्था बिगड़े।
होली के मद्देनजर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में कड़ी निगरानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। इधर पटना समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा को लेकर राजधानी पटना में 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उत्तर रेलवे होली के त्योहार पर सुविधाजनक यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम और प्रतीक्षालय बनाए गए हैं।
400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो और रेलवे के द्वारा जैसे ईसीआर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, ऐसे अलग अलग जो रेलवे जोन है उनके द्वारा जो ट्रेन चलाई जाएंगी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ वो अलग है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब करीब 26,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से आनंद विहार में 5,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग कम टिकटिंग एरिया बनाया गया है।
इधर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे भी प्रदेश के प्रमुख शहरों से होली विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि शनिवार 15 मार्च को होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होली के त्योहार के बावजूद तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। जो छात्र 15 मार्च को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है।
अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पटना एयरपोर्ट के सभी निर्माण कार्य जून तक करें पूरा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, होली अब वैश्विक, यूनेस्को की सूची में होगी शामिल। दैनिक भास्कर लिखता है, आईआईटी पटना में सीबीआई का छापा, कई फाइलें ले गई। प्रभात खबर की सुर्खी है, रमजान में 1 घंटा पहले आएंगे और जाएंगे मुस्लिम शिक्षक और कर्मी। आज अखबार लिखता है, पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 10 आतंकी ढेर। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, अब 60 वर्ष वालों को भी मिलेगा आयुष्मान कार्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वेब्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण की 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सप्तम राज्य वित्त आयोग का हुआ गठन। और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, 31 मार्च तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करने वाले व्यक्तियों पर लगेगा जुर्माना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।